for the second lunch. Evening. Would be taken temple of Lakshman, brother of Ram. There you see that Ramlila Krishna gave Krishna's sons Ajodhya Puri to Paul, kingdom. And he gave Lakshman this place. And Bharat and his sons Bharatpur, he has been here. And Shatrughna and his son gave Mathura. Very important thing this is. Then, Bhojanastani. Kulvalata, Bhojanastani.
कोई गोपियों जैसा प्रेम भी प्राप्त हो सकता है।
यहाँ पर जाने पर कामेवर का आशीर्वाद से वो पिपड़े जीव को प्राप्त हो सकता है। इसलिए कामेवर के अंतर्गत हम लोग कहते भजन स्थल जहाँ पर भगवान कृष्ण वचन करते करते सदा को साथ में जब वहाँ पर पहुँचे थे वहीं पर वे अपना सदा को साथ में तलवा ले जाते थे और वहीं पर बैठ करके भजन किया था। इसलिए अभी भी वहाँ पर स्पष्ट रूप में वहाँ पर थाली जैसे बना हुआ पत्थर जैसे वहाँ पर बनी हुई, इसलिए अभी भी वो स्थल चिन्हित करता है भगवान यहाँ पर विराज की थी। यह स्थली भगवान की लीला स्थली है, इसलिए वहीं पर भगवान कृष्ण जिस समय सकाम प्रसाद में भजन कर रहे थे ठीक उसी समय एक ब्रह्मासुर ने वहाँ पर आए और आ करके उसी समय कृष्ण आ गया।
हमारे समस्या ऐसा नहीं, पहले प्रभाव के साथ में खेल रहे थे ब्रह्माचुर को कंधे में बंद कर सकते, जब ब्रह्म को कृष्ण नहीं देखा तो समझ गए उस ब्रह्माचुर को मारा, मारने के बाद में मारते मारते समय बहुत लग गया और बच्चों को भूख लगी, तब वो गए भोजन थाली में और वहां पर हरे कृष्ण
कृष्ण सखाओं को साथ में खेल रहे थे। वहां पर करना था नहीं वो खेल था, सखाओं ने कृष्ण तो बन गए राजा और मधुमंगल को बना दिया मंत्री और वहां पर कुछ सखा बन गए चोर और कुछ सखा बन गए खेती का रक्षक खेती का मालिक और कुछ सखा बन गए खा लिया तो अभी खेती का जो मालिक थे अभी उन लोगों ने भेड़ को पकड़ लिया और पकड़ करके बोले हमारे खेती को हमने उजाड़ दिया इसलिए हम उसको पकड़ लिया है। लेकिन वो भेड़ का जो मालिक था बोले नहीं तुम लोग चोर हो और हमारे भेड़ को पकड़ के ले जा रहे थे, अभी तुम लोग को हम पकड़े हमारे राजा के पास हम तुमको ले जाएंगे। राजा को कृष्ण राजा अभी वहां पकड़ के जो चोर को ले जाए आगे के बोले कृष्ण अभी राजा हो अभी विचार करो, अभी ये लोग चोर हमारे भेड़ को पकड़ के ले जा रहे थे जिसको चोर बनाया था बोले हम चोर नहीं थे, ये हमारा खेती ये बकरी भेड़ आगे खेती को सत्यानाश कर दिया उजाड़ दिया इसलिए हम इसको पकड़ कर ले जा रहे थे, अभी विचार नहीं कर पा रहे ये बोले ये चोर नहीं, ये बोलते नहीं हम चोर नहीं खेती का मालिक। इतने में कृष्ण मधुमंगल को था मधुमंगल अभी तुम बताओ अभी इनको क्या दंड दिया जाए, मधुमंगल का कहीं आप अभी विचार दंड दिया जाएगा ये हमको पेट भर के लड्डू मिला है यही इनको दंड रहेगा लड्डू मिला है हमको पेट भर के लड्डू मिला है। इनमें इतने सारे चोर और जो वहां पर बने हुए बोले आगे इसलिए ये मंत्री राजा बने हुए तो वो लड्डू तेरा चक्कर नहीं और इसके लिए बन रही इसमें खूब हंसी मिलेगी है इसलिए ऐसे खेल रहे थे। खेलते खेलते इतने में उमासुर ने आकर के एक एक सखा को पकड़ पकड़ करके गुफा में बंद कर रहा था। कृष्ण ने देखा ये क्या हो रहे एक सखा कहां से अंतर्ग्रहण होते जा रहे हैं। इधर में देखते देखते देखा एक राक्षस सखा को लेकर के एक गुफा में बंद करके बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान उसमें लेकर बंद कर देता है। अभी कृष्ण उसको देख रहे थे अभी उसको पीछा किया पीछा करके वो राक्षस को पकड़ लिया, जिस समय उसको पकड़ करके कृष्ण उसको मारने गए उसी समय ये पृथ्वी उसी समय काम होती उसी समय बलदेव प्रभु अपना चरण द्वारा हुए पृथ्वी को उसको उन्हें धारण किया अपना चरण द्वारा क्योंकि वे संधि शक्ति की मूल अधिष्ठ देवता इसलिए वहां पर बलदेव प्रभु का चरण चिन्ह अभी भी वहां पर प्रभु का चरण चिन्ह है इसलिए भगवान वहां पर लीला की।
जहाँ पर हम लोग भजन तरीके का बहुत बड़ी कुंड है वहाँ पर ऐसे बताते हैं वहीं से ही कवि ब्रह्मा जी ने वो वहां से हरण किया है। इसलिए और जो कुंडली वहां पर कृष्ण कुंडली वहां पर इसलिए कोई से ब्रह्मा जब देखा कृष्ण के चरण में हमारा अपराध हो गया, हमने कृष्ण का भक्त और अपने श्रद्धा को चोरी किया, जैसे ब्रह्मा सर्वप्रथम वहीं से उन्होंने ये ब्रज मंडल की परिक्रमा उन्होंने शुरू किया था। कहते क्यों, कहते ये कृष्ण का धाम ही है, अगर ये धाम को परिक्रमा करेंगे तो मेरा जो अपराध ये अपराध से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए सुना जाता है ब्रह्मा वहीं से परिक्रमा प्रारंभ किया था, इसलिए वो स्थली अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थली है वो कांगड़ावती। वैसा करो तो वैसे जो बात सुन रहे हो सब बेटा काम पाओ ने जो
So the first race that we went to today was Goyal Chitali. So there, Krishna and his friends were playing and they made some divisions. Then Krishna was made a king, Madhavan was made chief minister, some boys they were made in charge of different garden areas, some boys made themselves to pretend they were like sheep or goats, and some boys made themselves into a group of thieves. So as they were playing, the boys were trying to steal, some other boys were disguised as sheep. Then the other boys were fighting, and they could not reconcile, they went to the king. And the king was conniving to Krishna. Then he said, present your case. The boy said, we own this garden, these sheep came in our garden, and we caught them. The other boy said, no, they are stealing our sheep. And Krishna said, I cannot work this out. Madhavan, you can give some decision. And Madhavan said, the decision is only boys should speak in any language. I told my son. Then there was so much laughing and joking. But as they were playing, and some sheep were getting being stolen, there was one demon named Yomasur. So Yomasur was one Rakshas, actually I heard he represents Mayavad. Because Mayavads, they never believe that Bhagavan should have any associates. Therefore, he thinks only there is a good Brahma, there is no Lakshmi, there is no Nasik, there are no copies, there is only Brahma. Therefore, he was taking the boys one by one and stuffing them in one cave. So that cave is a little bit up the hill there. So Krishna can understand where these boys have gone. My friends are disappearing one by one. This is obvious Yomasur. Therefore, that Krishna and Yomasur began fighting. So as they were fighting, the whole earth was shaking. And see, Baladev, with the Adhisthati Devata, or Santini Shakti, or existence, by his foot, he placed his foot on Prithvi, the earth, and the earth became steady by the footprint of Sri Baladevji. Therefore, even today, the footprint of Sri Balaram is still there. Just like in the Mahabharata, when Sri Krishna went to kill Grandfather Bhishma, that time he was very angry, he was running, and went with his chariot around his hand, he went to finish Bhishma. Arjuna grabbed Krishna by the waist and Krishna dragged him 14 paces. That time Krishna's pitanga flooded and fell on the ground, otherwise the earth would be destroyed. So he went to that place of Kamyavan. Buddha said Kamyavan means the place where everyone's desires are fulfilled, even those persons who desire to serve Krishna in the moon of the gopis. There also is the Kirsana, that kund of Krishna's shrine, also known as Krishna kund, and also there's Pichli. It's the path, that slide, where Krishna needs to enter to slide up and down.
उसके बाद फिर विशाल पहाड़ी कृष्ण और चारुका के भेद अपने सखाओं के साथ में इसी जगह ऊपर से नीचे बड़ी सुंदर चीकनी पहाड़दार खंड है, टुकड़ा है, उस पर सखा लोग ऊपर से जाकर नीचे पिछलते थे। इस प्रकार से तब से अभी 5,000 वर्षों से वो इसी प्रकार की है और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग परिक्रमा में जाते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसकी सत्य भी है। इस प्रकार से इसके बाद में वृंदा देवी में आप लोग गए वृंदावन जब मुगलों के अत्याचार से इंसान से राधा गोविंद जी को गोपीनाथ जी को भगत मोहन को राधा दामोदर जी को राधा को लेकर के जबकि महाराज जयपुर के नरेश वे जब जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में राधा को जगह काटे पड़ाव था। इस प्रकार में राधा जी गोविंद जी को रखा गया जिस स्थान पर गोपीनाथ जी को जहाँ पर मदन मन वो स्थान अभी भी वहां पर है। उसके बदले उसके प्रतिद्वंदी ग्रह हैं और असम विग्रह पर चले गए। फिर वहां से ये लोग यहाँ कामेवन में आए। कामेवन में जहाँ पर भी गोविंद जी थे वही वृंदा जी का मंदिर है। गोविंद जी के नाम से प्रसिद्ध नहीं है वृंदा जी के नाम से। इसका कारण यह है वहां पर जब महाराज अपने विग्रहों को वहां पर पधराया तो इस पर ये वृंदा जी का मंदिर है वहां पर राधा गोविंद जी को पधराया। जहां पर आप गोपीनाथ जी के मंदिर में गए थे चरण पहाड़ी के पास में शायद तो वहां पर गोपीनाथ और मदन मोहन का इतर में शायद आप लोग नहीं गए वो भीतर में है। तो उस समय कुछ दिन रहे और इसके बाद में वहां से तीनों विग्रहों को लेकर के चले गए जयपुर में। विग्रह तो चले गए किंतु वृंदा जी नहीं गई। वृंदा देवी वही कामे बन में ही सीमा तक रह गई और जयपुर नहीं गई केवल कृष्ण ही गए। इसलिए वृंदा जी का वहां पर मंदिर है। हम लोगों ने कामेवन से उस वृंदा जी को उनके वन में वृंदावन में हम लोग ले आए और अपने मंदिर में हम लोगों ने उसको स्थापित कर दिया है। फिर कामेश्वर महादेव ले गए वहां पर महाराज युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ। कौन बोलेगा
In the time of Krishna, 5,000 years ago, Krishna suffered used to slide on a very shiny piece of stone. So even today, the indentation made by Krishna and his friends is still there. And all different Parikram parties from all four sampradayas even today slide on that place in remembrance of that pastime. We went to the temple of Vrindavan. Because of the disturbance by the Muslims, the main deities of Vrindavan, like Govinda, Sri Gopinath, Sri Radhananda, Radhini Lord, Srinada Mandav, all the main deities of Vrindavan were moved by Maharaj Man Singh to Jaipur. So on the way, the three main deities of Radha Govinda, Radha Gopinath, and Radha Madan Mohan, on the way they stopped at Radha Kund. And on the way to Jaipur, they stopped in Kamyavan. Therefore, Kamyavan is not so much famous for the temple of Govinda as it is famous for the establishment of the Vrindadevi temple. At different places where Man Singh Maharaj stopped, in Pratibuha, the representatives of those three deities, Govinda, Gopinath, and Madan Mohan, have been established. We did not go to the temple of Madan Mohan because time was short. Therefore, Krishna left Vrindavan and went to Jaipur, but Vrindadevi she did not leave, as she appeared in the mind of the devotees who were carrying her out of Vrindavan, said, "Do not take me outside of Vrindavan." There were those three main deities, Radha Govinda, Radha Gopinath, and Radha Madan Mohan went to Jaipur. And Guru Maharaj says, Vrindadevi was established there in Kamyavan. And Guru said by the expression of Vrindadevi that he also established Vrindadevi in Sri Guru Sanatana Gaudiya Mathas 7th Guru.
हम लोग सिलपुरी जी का कामेश्वर महादेव में हम लोग वहाँ पर दर्शन किया। कामेश्वर महादेव हर धाम में श्री शंकर जी वहाँ पर भी श्री शंकर जी इनके महाराज जी कभी हमने बताया कि ये कामेश्वर महादेव जो महादेव हमारे सारे कामना को पूरी करते हैं। कभी हमारा क्या कामना है, हम चाहते हैं क्या क्या काम है, केवल हमारा एक ही काम है, केवल राधा रानी की दास्य ही हमारी एक काम है और हमारा कोई काम नहीं। इसलिए आमित राधिका पक्षपाति सदा, इसलिए कबू नहीं रहता कि केवल यही हमारा काम है। इसलिए कलबल एकदम प्रयोजन, केवल एक ही प्रयोजन है, केवल राधा दास्य ही हमारा काम नहीं। ये काम को श्री शंकर जी पूरी करते हैं और उसको आस पास में वहाँ पर बहुत सारे लीलाएं हुई है। वहाँ पर हम लोग कवर किया वैष्णव कुमार से, वहीं पर पंच पांडव उस दिन तक वहीं पर निवास किए जब उनको वनवास हो गया। वनवास का समय नहीं, वहीं पर पंच पांडव रहते समय दुर्योधन हर समय इसी चेष्टा में रहता था कि पंच पांडवों को कैसे हम समाप्त कर दे। इसलिए कभी दुर्योधन को घर में श्री दुर्वासा जी आए, दुर्योधन खूब उनको सेवा दी। वो दुर्वासा को बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते और बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते। इसलिए जब उनको संतुष्ट कर दिए अभी दुर्वासा चाहते हैं उनको बरदान देना। तो आप हमें क्या बरदान देंगे, आप जैसे हम लोगों को ऊपर में कृपा की, हमारे भाई लोग भी है पास में काम में बैठे, आप उनको पर भी उनका सेवा करने लगे, उनको पर भी आप कृपा कीजिए। दुर्योधन को पता था द्रौपदी को पास में एक बटल है जो सूर्य का प्रदर, जब तक द्रौपदी नहीं खाती तब तक वो विश्व ब्रह्मांड को खिला सकती है, लेकिन द्रौपदी खाने का बाद मैं तो किसको खिला नहीं सकती। वो पता लगा रहा था द्रौपदी का भोजन कब समाप्त हो जाए, उसको पता लगा रहा जब द्रौपदी का भोजन समाप्त हो गई तब उन्होंने दुर्वासा जी को उन्होंने भेज दिया। दुर्वासा जी जब आए इनमें युधिष्ठिर महाराज बोले ही शिष्यों के साथ आया, इसलिए 60,000 शिष्यों को साथ में आए। द्रौपदी के पास में जाकर पूछो ये क्या भोजन कर चुकी है। भीम ने आगे बोले द्रौपदी को मैं भोजन कर सबको खिला करके मैं भजन कर चुकी हूँ, सर्वनाश कर दिया। आज तो दुर्वासा 60,000 शिष्यों को लेकर आए राज्य पार्टी यहाँ पर, अभी हमको खिलाए कैसे, ये दुर्वासा नहीं ये तो संकट का अवतार सका काल आ गया, अभी हम क्या करें। इतने विभीषण महाराज बोले आप स्नान करके आइए, हम सब व्यवस्था करते हैं। जब दुर्वासा स्नान करने के लिए गए इतने में द्रौपदी एक एकांत जगह में बैठ करके पंचपांडव ने कहा द्रौपदी कृष्ण तुमको सखी बोल करके संबोधन करते हैं, हम से जल्दी से ज्यादा 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 तुम्हारी प्रार्थना को श्रवण करेंगे। द्रौपदी एकांत में बैठ करके फिर कृष्ण को स्मरण की, बोले हे श्याम सुंदर, हे पति पावन, हे दीनबंधु, हे भक्तों को प्राण करने वाले, मैं अपना लिए तो कभी मैं चिंता करती नहीं, मैं तो हर समय तुम्हारे भक्तों का मैं सेवा, तुम्हारे भक्तों के ऊपर में विपत्ति आ पड़ी इसी किसी समय आप ही रक्षा कर सकते हो। द्वारका में रुक्मणी अभी परसा हुआ थाला लेकर के कृष्ण को खाने के लिए वहां पर भी सामने रखी है, इतने में द्रौपदी को कान में फेंक आया, इतने में परसा हुआ थाला को उन्होंने सरका दिए। रुक्मणी बोले क्या कर रहे हो, भजन करोगे नहीं, आज पर भक्तों के ऊपर में विपत्ति पड़ी, आज मैं अपना सखी को घर में भोजन करूंगी। इतने में कृष्ण रथ में बैठे वायु से भी तेजी गति से अभी कृष्ण आगे के काम में बने सबकी गति कर रथ में कृष्ण साथ साथ वहां पर पहुंचे। अब द्रौपदी वहां पर बैठ कर कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, इतने में कृष्ण आगे के ट्राइवल पांचाली द्रौपदी द्रौपदी कृष्ण कहां से आगे, अभी जिनको स्मरण कर रही थी आंख खोलते ही देखा वही साक्षात रूप में खड़े हैं। आश्चर्य में पड़ गई। कृष्ण ने कहा द्रौपदी मैं पैसा हुआ थाला को मैंने सरकार करके छोड़ करके आया हूँ, मुझे बड़ी भूख लग रहा है, मैं कुछ बल दे रहा हूँ प्रभु, इसलिए तो आपने हमें बुलाई। दुर्वासा 7000 शिष्यों को ले लेकर अभी धन में आया है, अभी मैं भजन करने के बाद उसको भजन नहीं करा सकती हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पहले मेरे को पहले भजन कराओ उसको बाद में फिर तुम्हारा बात सुनूंगा। कहते प्रभु कुछ नहीं, कहते बटोल लाओ तो सही। भगवान चमत्कार का है, बटोल लाए तो देखा उसने एक केवल चावल के किनका उसमें लगा हुआ, एक गिलास पानी ले आओ। कृष्ण केवल उसको ग्रहण करके बोले अगर मैं विश्वभर हूँ, मैं तृप्त हो गया और एक गिलास पानी पी करके उन्होंने डटार उठाया तो जितने सारे ऋषि सब स्नान कर रहे थे सबको देखा पेट इतनी दिन बड़े खुल गया, अपने आप लग रहा है डला तक भोजन किया, हजमला खाने का ताकत नहीं, कितना यहाँ तक अभी एक दिन ये क्या हो गया, अपने आप चार तरह का प्रसाद हमने पाया है। इतने में कृष्ण बोले फिर से जाओ ऋषियों को बुला करके ले आओ। बोले प्रभु ये मृत्यु को क्यों मुक्ता दे रहे हो, मृत्यु को सच्चा। बोले जाओ गदा लेके ले जाओ। इतने भीम से गदा लेके जब आए उनको बुलाने के लिए, दूर से ऋषि लोगों ने देखा अरे भीम तो गदा लेकर के आ रहे हैं, जरूर भजन के लिए प्रशिक्षित किए होंगे, यहाँ पर हजमला करने का भी शक्ति ताकत नहीं, अभी क्या किया जाएगा, अगर भजन नहीं कर पाएंगे इसका गदा एक नीचे नहीं गिरेगा, सब पीठ के ऊपर में गिरेगा, वहां से भागो। ठीक जब वहां पर पहुंचे देखा कोई भूल लो कोई भूल वहीं से भाग रहे थे और भाग नहीं पा रहे थे, भीम वहां पहुंच करके देखा बैदान खाली कोई भी कोई नहीं, इसलिए ये घटना भीम समझ गए थे कृष्ण का ही चमत्कार था, ये घटना वहीं पर हुई थी और वहीं पर ही पंचपांडव जिस समय थे उसी समय वनवास में दुर्योधन और कर्ण सुशासन जी को ले गए थे, उनको खेल बनाने के लिए उन पर उत्सव मनाने के लिए गए थे और उनको सामने उनको अपमान करने के लिए गए थे। इतने में इंद्र ने देखा इंद्र का अंश से ये अर्जुन आया है, उनको पुत्र लगता है, इंद्र ने देखा एक ने तो वनवास में दे दिया कृष्ण के भक्त और इनको मैं तन करने के लिए आए। इतने उन्होंने चित्रसेन को उन्होंने भेज दिया गंधर्वों को और गंधर्व ने आकर के दुर्योधन को साथ में जूझ करते हुए दुर्योधन को बंदी बना करके उसको ले जा रहे थे। इतने में दुर्योधन ने बड़े जोर बचाओ हमको बांध करके ले जा रहे हैं, जब जोर जोर से पुकारा वही पर युधिष्ठिर महाराज थे, बोले ये क्या हो रहा है किसको बांध कर ले जा रहे हैं, कहा दुर्योधन को पकड़ कर ले जा रहे हैं गंधर्व को, बोले अर्जुन जल्दी जल्दी जाओ दुर्योधन को वहां से निकालना, मुंह जगह करके बोले भीम जाओ, बोले क्या ये हमको अपमान करने के लिए आए थे जंगल में, हमको कपट जुआ मिल करके हमको भरा दिया घर से और ये हमारे शत्रु आप बोल रहे हो उसको बचाने के लिए जाए, जब उन्हें सुनने नहीं आएंगे, इसलिए कितने तरह से मारने के लिए प्रयास किया कभी मैं नहीं जा सकता हूँ। इतने में उन्होंने बोले देखो भी अभी वो हमारे शत्रु है, जब कोई जब हम घर का ये घर की बात है, जब कोई बाहर से कोई हम लोगों का आक्रमण करेगा उसी समय हम 5 नहीं उसी समय हम 105 भाई है, हम जब देखिए घर की बात झगड़ा की बात घर बाहर लोग आक्रमण कर रहे हैं। इतने में बोले अर्जुन जा तुम जा करके दुर्योधन को बचा कर मिला। इतने में अर्जुन आया बाण मार करके सारे उस हार को परास्त कर दिया, अब मुक्त जब कर दिया वो ऊपर से गिर रहा था। इतने में अर्जुन ऐसे उन्होंने बाण मारा एकदम सुंदर उन्होंने सीढ़ी बना दिया और सीढ़ी बना करके ऊपर से लेकर के युधिष्ठिर महाराज का चरण तक बना दिया और इतने में दुर्योधन बैठे वहां से हाँ फिसलते फिसलते आकर के युधिष्ठिर महाराज को चरण में गिरा और उनको मुक्त कर दिया। उसी समय दुर्योधन ने बोला था समय आने पर अगर मुझे कुछ वर मांगोगे तो मैं आपको कुछ वर दे सकता हूँ, ठीक है जब जरूरत होगा तब हम वर मांग लेंगे। वहां पर ये इलाज वहां पर हुई थी
आदमी की समय
वहां पर जब आया
उसने कहा जैसे हम इसका बदला लेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कृषि को जिस हमने इतना करता है और वही हमारी रक्षा कर रहा है। अगर वो जाना तो बल्कि रक्षा पर किंतु शत्रु से बचना भी रक्षा है। वहीं पर पंचपांडव राज के समय कभी द्रौपदी को कभी प्यास न लगी तो उसी समय
के साथ में जो हमारे
वहीं पर कभी द्रौपदी को प्यास न लगी। इतने में युधिष्ठिर महाराज नकुल को बोले नकुल देखो तो आसपास में कहीं पानी होगा। अभी जब उन्हें आसपास में कहीं पानी दे करके जब पानी पीने के लिए गए इतने में देखा एक यक्ष बोले साहब तुम्हार पानी नहीं पी सकते हो। इतने में देखा ये कौन बोल रहा है, देखा एक बगुला जैसे तो बोलता है मेरा प्रश्न का उत्तर दे करके फिर तुम पानी पी सकते हो। उन्होंने देखा कि बगुला अगर इसका प्रश्न का उत्तर दे करके फिर तुम पानी पीऊंगा। जो जबरदस्ती पानी पीने के लिए गया तो वहीं पर वो बेहस हो गया। श्री महाराज ने देखा कि आया नहीं फिर उन्हें सहदेव को फिर अर्जुन फिर भीम को देखा। ये लोग भी जब पानी पीने के लिए गए उस समय भीम को भी बोले साहब धार मेरा प्रश्न का उत्तर दे करके पानी पी सकते हो। तो उन्होंने भी जोर जबरदस्ती पानी पीने के लिए गए तो वो वहीं तो श्री महाराज देखा गए जब गए कोई आए नहीं। अब श्री महाराज आए जब फिर वो पानी के लिए जा रहे थे देखा फिर एक बगुला रूप धारण करके बोले सावधान पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पियो नहीं तो चार भाइयों का जो दशा उसी दशा आपको भोगना पड़ेगा। वो तो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में जो स्थिर है हर समय जिनका बुद्धि स्थिर बुद्धि है। तो उन्होंने कहा कृपा करके आप पूछिए। तो उन्होंने बहुत प्रश्न किया था उन प्रश्नों में उसमें चार प्रश्न विशेष प्रश्न था। उसमें उनका पहला प्रश्न था का पंथा वास्तव मार्ग क्या है। लोग इसी भक्ति मार्ग में लोग तरह तरह का मार्ग में चलते हैं इसलिए तो उन्होंने उत्तर दिया वेदाधिवृणा स्मृतिवृणा नासो मुनि मतम न वृणा धर्म नीत उपाया महाजन सफलता। इसलिए पद हजार नहीं स्मृति भी मिलना ऐसे कोई मुनि नहीं जो अपना मनमानी कोई हम मत को उन्हें नहीं निकाला लेकिन जो वास्तव जो धर्म की जो मार्ग वो अत्यंत अत्यंत गोपनीय है। इसे वो क्या है कहते महाजन जैन सफलता। इसलिए महाजन ने जिस मार्ग पर गए अभी प्रश्न है महाजन कौन कौन है। अब ये चीज को धर्मराज स्वयं जय महाराज अपना दूतों को बोले वहां पर बोले महाजन बार है बोले स्वयं तो नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म अर्जुन व्यास की बजे कहते हम ये बार महाजन ये महाजनों ने जिस मार्ग पर गए इन लोगों का मार्ग भी सही मार्ग और बाद में जो उसी मार्ग पर उसी मार्ग पर जो अनुसरण किए जैसे हमारे सर्व स्वामी हमारे गुरु परंपरा में जो गुरु वर्ग लोग आए इन लोगों के रास्ता पर अगर कोई चलेगा तो उनका मार्ग सही मार्ग है। और उनका दूसरा प्रश्न था जगत में कौन सुखी है तो उनको उत्तर था और इन्हीं अप्रवास। इसलिए कहते जो और ऋणी जिसका कोई ऋणी नहीं इसलिए ऋणी का अंदर पर क्या होगा चिंता करेगा आप ऋणी कैसे चुकाएंगे। इसलिए एकादश बताया वास्तव रूप में ये सारे ऋणी से कौन मुक्त हो सकते हैं तो वहां पर बताया केवल ऋणा पितृणाम नारायण चराजन सर्वात्मना शरणम शरणम दत्तम कुंदम परिहर्त कर दत्तम। इसलिए कि जगत में आने पर जीव को पांच प्रकार के ऋणी में ऋणी बनना पड़ता है। देव देवर्षि देव देव ऋणी
ऋषिणी जीवनकारिणी राजा रिणी और कैसे करके पिता माता करें कैसे करके उसको पांच छह को चुकाना पड़ता है। लेकिन कभी समस्त ऋणी से कौन मुक्त हो सकता है? कहते तो संपूर्ण रूप में कृष्ण जिसको बोलते सर्व धर्मान परित्यजमान एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पाप दुर्मोक्षे सविमाम। इसलिए जो सारे धर्मों को छोड़ करके केवल भगवान का चरण में जो शरणागत हो जाता है कहते वास्तव रूप में कोई व्यक्ति भी सारे ऋणी से ही मुक्त हो सकता है। नहीं तो जगत का पिता माता रहने के लिए सुखा ही नहीं सकते। एक एक ऋणी चुकाने के लिए तो कितने जीवन लग जाएगा। केवल एक ऋणी चुकानी चाहिए भगवान का ऋण और गुरु का ऋण, उसी ऋणी सब ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तब ये तीसरा प्रश्न था क्या था का वार्ता क्या वार्ता क्या है संवाद क्या है? तो उन्होंने बोले ये संसार रूपी एक कढ़ाई है। कहते कढ़ाई में जीव कैसे वहां पर कैसे खोल रहे और दिन रात रूपी सूर्य का किरण से कैसे खोल रहे और ऋतु रूपी जो कलसी को द्वारा उसको तरह तरह का दुपकर दिया जा रहा है। इसलिए वार्ता है जीव तत्व तो कैसे भगवान को भूल करके ये संसार में आ गए और संसार में कैसे जीव के दुख कष्ट हो कर रहे हैं। इसलिए कहते यही वार्ता है। और उनका जो चौथा प्रश्न था तीन आश्चर्य जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बल अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमनिय। कहते सबसे आश्चर्य बात यही है हम देख रहे हैं हमसे जो छोटे थे वो हमसे पहले चले गए लेकिन हमारा सामने हमने देखा छोटे जो थे वो सबके सब चले गए उनको सब जला दिया स्वयं जाकर जला करके आए। लेकिन हम स्वयं सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे हम तो चिरकाल के लिए हम जिंदा रहेंगे इसलिए हम कभी नहीं मरेंगे। कहते जगत में ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए और जब हम जानते हैं हम मरेंगे फिर हम भगवान का भजन भी करते हैं। इसलिए जगत में यही आश्चर्य जी अपना को चिरकाल हम रहेंगे और चिरकाल संसार का विषय भोग करेंगे यही करके जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है। और जीव जो भगवान का भजन नहीं करते तब उन्होंने जब उन्होंने यथाजथ उत्तर दिया वो प्रसन्न हो गए बोले आप एक काम कर सकते हो कभी जो चार जो मरे हुए आप इनसे आप एक व्यक्ति को आप जिंदा प्राप्त कर सकते हो बताओ ये चारों में आप किसको चाहते हो? बोले चारों में ये नौकरों को हमें दे दो। बोले क्यों? ये तो भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी वो तुम्हारा भैया है वो तो माधुरी का संता तुम उसको क्यों चाह रहे हो? कहते मैं युधिष्ठिर हूँ मैं अपना मैया का एक संतान में जिंदा हूँ अभी माधुरी के लिए दो संतान है इसलिए चाहता हूँ इनका भी एक संतान जिंदा रहे। इसलिए आप उनको जिंदा करा दो। इसलिए इनका विचार देख करके वे आश्चर्य हो गए आश्चर्य हो गए कि ठीक है मैं आपका विचार से संतुष्ट हूँ कि सबका सभी को प्राण प्राप्त हो जाएगा सबके सब चिंता हो जाएंगे। फिर सबके सब चिंता लेकर के फिर उन्हें वापस आए। फिर वहां पर ये लीला भी उत्पन्न हुई थी वहां पर और बहुत सारी लीला
pertaining to the Pandavas, the five Pandava brothers, who when they were in exile, they used to come to this place, and there were a number of incidences which took place there. In this Bhimalakunda, when they were camping nearby to there, one day, nearby, the very envious cousin brother of the Pandavas, Duryodhana, he wanted to embarrass the Pandavas. Therefore, he invited Durvasa Rishi to come to his palace. And he fed Durvasa Rishi very sumptuously. He gave him all kinds of very special preparations. And Durvasa Rishi became very satisfied. So he requested Duryodhana to ask him for some favor, some benediction. And then Duryodhana, he said, "Oh, my dear cousin brothers, the Pandavas, and Draupadi, they are residing nearby here at Bhimalakunda. And I would wish that you would go there to that place and kindly accept meals from them also. But please go there in the latest part of the afternoon, in the third prahara of the afternoon." So actually, evil Duryodhana had a scheme because he knew that Draupadi, she had a very special pot which was given to her by Sri Krishna. And this pot had the benediction that whatever she would cook in that pot, it could feed any number of people. Unlimited number of people could partake of that prasadam that she would cook. However, once that she would wash that pot and it would be finished, then no more persons could take anything. So it was like a magical, mystical pot. Now, so he wanted that Durvasa Rishi would go there in the latter part of the day because he knew that they would be finished with their meals and that nobody would have already washed that pot. So suddenly, on that day, Durvasa Rishi came there to that place. And all the Pandavas, they were very concerned that Durvasa Rishi, he should be able to accept his meals. But also, I forgot to mention that Duryodhana requested that Durvasa should go there with his 60,000 disciples. So not only he, who had a very huge appetite, would go, but also she would have to feed the 60,000 disciples of Durvasa Muni. So when he came there, then the Pandavas were very concerned, and Draupadi especially, she was very shocked and frightened because she did not know what to do. So they requested that Durvasa Rishi should go and he should take his bath in Bhimalakunda. So he went there with all of his disciples. And in the meantime, Draupadi was thinking, "Oh, what to do, what to do?" And in this helpless condition, she knew that she had no other choice, no other alternative. She began calling out, "Hey Krishna, Hey Krishna." Because Draupadi has a very intimate, friendly relationship as Sakhi with Krishna. So she called out to Krishna. And actually, when Krishna hears the calls of his beloved devotees, well, very quickly, immediately, Krishna will come to rescue them. So suddenly, Krishna came there, and he appeared in front of Draupadi. And he said, "Oh, my dear Sakhi, I am very, very hungry. Please feed me." And she explained to Krishna the problem that Durvasa Rishi was waiting nearby. She had nothing to feed him. And also, practically, she had nothing even to give to Krishna. But Krishna said, "You should bring me that pot of yours. Just bring it here." Because she told him that it's already been washed, and there's nothing left. So he said, no, bring me the pot. So when she brought the pot to Sri Krishna, then Krishna examined the pot, and on the very outside of the pot, he found one tiny little piece of spinach, green leafy vegetable, which is still sticking to the pot. So with his fingernail, he scraped off this little piece of spinach, and he put it into his mouth, and then he requested from Draupadi some water to drink. Then he drank the water, and suddenly he felt completely satisfied and full. He said, Tripto Svi, I'm completely satisfied. And even Sri Krishna, he belched out of satisfaction. So, now, as Durvasa Rishi was nearby, when Sri Krishna felt this full sensation in his stomach, Suddenly, Durvasa and all of the 60,000 disciples, they also felt completely filled, as if they had eaten up to their necks a whole feast. They couldn't eat one tiny little morsel more. So now Sri Krishna instructed that Bhimsen should go there, or Yudhishthira instructed that Bhimsen should go, and he should bring Durvasa Rishi. So Bhimsen began to go there with his glove on his shoulder, with his mustache curled, and yelling out, "Oh, Durvasa, Durvasa, come now, come now." Like Shripa Tirtha Maharaj is always telling us, "Come, come to the buses, come to the buses. Don't delay, don't delay." So he was calling out like this, Durvasa Rishi. And now Durvasa Rishi, he became very frightened because he remembered, "Oh, I made a big mistake before with Amrish Maharaj. I don't want to make the same mistake again." And suddenly he took off into the airways, flying into the airways with his 60,000 disciples. So in this way, when Bhimsen came there, nor Durvasa. So how Sri Krishna always answered the prayers of his beloved devotees. Another incident which took place was when So Duryodhana was camped nearby to the Pandavas. And when he was camping nearby to them, he was having a big party. And he was trying to embarrass all the Pandavas for a number of days. He was having feasting and celebration, and he was trying to embarrass all the Pandavas. So Indradev, who is the father of Arjuna, he didn't like this. So he didn't like that they were trying to do such a dastardly deed against the Pandavas. So therefore, he sent his general of his army in the heavenly planets, Chitrasen. So Chitrasen came there with so many Gandharva army, and he came down and attacked the camp of Duryodhana. He defeated Duryodhana's entire army, and he defeated Duryodhana and captured him. And now he was taking Duryodhana up into the airways. And Duryodhana was screaming and calling out, and he was very frightened. "Save me, save me, save me." So then Yudhishthira, seeing the predicament that Duryodhana was in, now he told that Bhim, "Oh Bhim, you should go and you should help him. He is our brother." And Bhim said, What are you talking about? He's our enemy. He's trying to embarrass us. He's always getting us into difficult situations. I don't want to help him." And then Yudhishthira said, No, you have to understand that when we are sometimes amongst ourselves as brothers, well, we can quarrel amongst ourselves. But when there is any outside attacking party, then we are 105. All of us are all together as one. We must go and save our brother." So then he instructed them to go. And Arjuna, he instructed Arjuna. And now Arjuna, Bhim still wouldn't do. So he instructed Arjuna, and Arjuna now began to fire arrows into the sky. And he built a stairway. And then he went up on the stairway. He raised in a very amazing mystical way with his arrows. He built this stairway, and at the top of the stairway, it was so exactly calculated that Duryodhana would be able to suddenly roll down the stairway and come down to the ground. So, and when he fell down to the ground, he fell right at the feet of Maharaj Yudhishthira. And Maharaj Yudhishthira raised him affectionately, received him very respectfully. And this was a very, very great embarrassment to Duryodhana. Even though he was being dealt with in such a heartful way, but Duryodhana, what is the nature of Duryodhana? His heart is like a piece of coal. If you try to wash a piece of coal, it will remain black. You continue to wash it for days on end, still it's black. So in this way, Duryodhana, he went back to his kingdom, and now he became even more and more envious against them. What's the next one? Oh, Dharma Kunda, yes. One day, the Pandavas were in that area, and they were wandering in the forest, and they became very, very thirsty. So they wanted to find water. So Maharaj Yudhisthira noticed that off in the distance, some birds were coming down from the sky and landing on the land. So he understood that there must be water there. So he decided that he should send, first of all, Bheem Singh. No? Bheem. Yes, he sent Bheem. He sent Bheem there. And so when Bheem Singh came there and he saw this pond of water, this kunda, well, immediately he wanted to go and drink it. But there was a yaksha standing on the side of this pond, and the yaksha was in the form of a stork, of a heron, with the long legs and the long beak. And this yaksha spoke to him and said, "You should be very, very careful. Don't drink this water." And Bheem said, "What are you? Who are you? Why are you telling me this?" Yes, he said, "First of all, before you drink, you have to reply to my questions. You have to answer my questions." And Bheem Singh completely ignored this bird. He went and he drank some water from the kunda. Then he suddenly fell unconscious. So Yudhisthira was waiting for Bheem to come back and give them news where they could come and get water. So when Bheem didn't return, then he sent Arjuna. So now Arjuna went there. And same thing happened again. Arjuna saw the stork asked Arjuna, "Yes, you must reply to my questions. First, don't drink." And Arjuna again ignored him. And again, he drank the water and he fell unconscious. And again, Yudhisthira Maharaj is waiting. So then he said, one by one, Nakul, then Sahadev, and each brother, they did the same thing. They didn't listen to this bird on the side, this yaksha, they drank the water and fell unconscious. So now Yudhisthira was wondering what to do. All four brothers gone. So now he himself went there. When he arrived, he saw his brothers unconscious on the ground next to the lake. And then he saw this bird. And the bird also spoke to him. He said, "I have questions you have to answer first. And if you answer these questions, then I will give you a benediction, I'll give you a benediction." So Yudhisthira Maharaj is very, very intelligent. He is Dharmaraj, actually. He is the son of Dharma. And actually, this stork, in the form of a yaksha, was actually his father Yamaraj, who was coming to test him. But he didn't know it at that time. So, but because he's so intelligent, now this riddles and questions were put to him. And so the first question that he asked him was, who is happy? But actually he asked him a group of four questions. There are a number of questions in Mahabharata, different groups, but usually we discuss these four main questions. Who is happy? What is the greatest wonder? What is life's real path? And what is truth-worthy? So, when he asked him, who is happy? Who is the person that is actually happy? Then Yudhisthira Maharaj thought very carefully, and he says, that person who is never in any debt to anyone. He is not a debtor to anyone in this world. He also does not have to be in any foreign land, and also very easily he can obtain his meals and very nice leafy vegetables and herbs and such. So that person, he is very happy. The meaning behind this is that, so the person who has no debts in this world, who is that person? It can only be a Krishna Bhakta, a person who has completely surrendered his life and soul at the lotus feet of Sri Krishna. Because why? As soon as anyone takes birth in this world, immediately they have to have so many debts. They have debts to their parents for giving them this physical body. They have debts to their relatives for helping to maintain them. They have debts to their forefathers also, who enabled them to come into this world. They have debts to the demigods who are supplying us all the different facilities of the material nature. And in this way, so many different debts are accrued simply by taking birth in this world. And everyone has to try to pay those debts. Otherwise, they incur sinful reaction and bad karma, and again, they have to take birth in this world But actually it is stated in Srimad Bhagavatam. That anyone who has taken full shelter of lotus feet of the Supreme Personality of God and Sri Krishna, then that person is no longer a debtor to anyone, not forefathers, not his parents, not the demigods, not the rishis, no one he's in debt to. He is completely free from all debts. And this is also stated by Sri Krishna in Bhagavad Gita, where he says, Sarva dharma prityajya maam ekam sharanam raja aham tvam sarva papekya moksha ishyami maa shuchaha. He promises there to Arjuna at the very end of Gita. He says, give up all other dharmas. Don't worry or don't fear about any of your responsibilities to the mundane dharmas of this world. And maam ekam sharanam raja. Simply surrender to me alone. If you do this, I will automatically free you from any kinds of reactions, sinful or pious reactions in this world. So do not fear. So in this way, Maharaj Yudhisthira, he correctly answered the question, who is happy in this world? When he asked the question, what is life's real path? Then he thought very deeply, and he said, Kargo Pratishtash Shutayo Babinam Harish Naso Gudur Munir Yasir Hatam Babinam Dharmasya Tatkam Nihitam Guhayam Mahajanayena Tatsa Manta. So he said there, in this material world, there are so many opinions. What is the path? What is the process by which we can attain our real benefit in life? There are so many different rishis and munis. They're great thinkers, big philosophers. They're trying to give so many different opinions like this. But actually none of them can give you the right course of action to take in this world. Therefore he said, dharmasya tattvam nihitam guhayam. It is a very subtle thing. It is hidden within the deep core of the hearts of the mahajans, the great personalities of this universe, of which there are 12 mahajans in this universe, mentioned by Yamaraj in the 6th canto of Srimad Bhagavatam. So those great Mahajan personalities, only they know what is the actual path that everyone should follow in this world, and that is Bhagavad Dharma, the path of serving the Supreme Personality of Godhead. Then, when he asked the question of what is the greatest wonder, Himascharya. So, if we were to be asked, what is the most wonderful thing in this world, the most amazing Acharya in this world, it would be very difficult for us to give this. But Maharaj Yudhisthira is so intelligent. So he said, Ahani Ahani Bhutani Kaptaschina Yamalayam Shesha Stavram Ichanti Kimascharya Matakara. He says, day after day, everyone in this world is going toward the same destination. We see people are dying all around us. Our relatives are dying. They've already died. Our friends are dying. And this material world is Martyrlok. It's a place of death. But yet, Shesha Stavram Yichakti, those who are still here, left behind in this world, like all of us, we're all thinking that we're going to make a permanent situation, that we are not going to go there. So he said, what could be more incredibly wonderful than the conditioned soul is so much an illusion that he sees all the people, he doesn't even know at which moment he's going to die, but yet he lives his life, makes his plans, and he thinks that he's going to live for 100 years, 1,000 years, and he'll never die. Everyone is thinking like this. So Maharaj Yudhisthira said, yes. Him Acharya Natakparam, what could be a more wonderful, amazing thing than this? So that was the correct answer. And finally, what is newsworthy? Or in other words, what's the news? So every day we see so many newspapers. We see so many news programs, CNN news, internet news, and everybody's trying to find out what is the news. But they're telling you all the little details. that are happening in the material world, all the different news, mostly bad, just a little bit of so-called good news. But when Maharaj Yudhisthira was asked what is the news, he gave the absolute truth. He gave the absolute answer. And he said, the news is this. We are all jivas, all living entities in this material world, there's a very big frying pan, and they're all being fried. Yes, like being in a big wok with a burning fire underneath it and being ladled around stir-fried in the pot of this material world. So he said that this material world is like a big frying pan, and all the jivas are being fried in the material nature, and the stirring pot is the changing seasons, and the fire that's underneath them is their karmic activities, burning their impious activities. So this is the predicament of every single jiva soul in the material universe. So if someone asks you, what's the news? Just tell them, we're all being fried. So that was Yudhisthira Maharaj's answer. And time is the cook who's stirring the pot. He answered all four questions and other questions as well. And now the yaksha became very satisfied. He said, oh, now you should ask me. You can ask me for any one of your brothers to again be brought back to life, and I will immediately do that. So then Yudhisthira thought very carefully, and he said, I want Nakul. Nakul was the son, the oldest son of Madri, who was the co-wife of Pandu. Yes. So then, you know, then when he said that he wants Nakul to be brought back to life, then the yaksha asked him, why do you want Nakul? He's not your direct full brother, he's your half brother. So why don't you want being saved? Because he's your own brother and he's the strongest. Then Maharaj Yudhisthira said, I believe that the greatest dharma is to see all living beings equally and to deal with all living beings with equality. Samoham. Just like Krishna, he sees all living beings equally. Samoham sarvabhutesu namatvaishyasya priya. I don't see any difference between any living being. They're all my eternal parts and parcels. So someone who's on the path of pure Sanatana Dharma, they must also see all living beings as parts and parcels of Krishna and deal equally with all living beings mercifully. So therefore he said, I want that Nakul, he will be brought back to life because he is the son, the eldest son of Madri. And I want that because I am living, so Kunti, she already has one son living, so if has her son, then this will be fair for her. This will be justice for her. And she will not have to weep that she has no sons. So when the yaksha heard this, oh, he became very satisfied. And he also revealed to Maharaj Yudhisthira, I am Yamaraj. I have come to test you. So in this way, Maharaj Yudhisthira passed the test. And then he also brought all the other brothers back to life because he was so satisfied. So all these pastimes occurred at Vimalkund and Dharmakund, where we went today by the mercy of Srila Gurudev. Lots of help from the
भागने लगा, उस समय आदमी लोग ने पीछा किया और कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और द्रौपदी के यहाँ लाया पर इसको क्या कारण दे जान से मार डाले तो उन्होंने कहे नहीं तुम्हारी पहन का जो मशीन है तुम्हारी पहुंच निर्भर हो जाएगा अर्जुन ने उसके पास सिखाए रख दी और रख करके छोड़ दिया वो लज्जित होकर के चला गया क्या किया कि हम अर्जुन को मारेंगे किंतु हो गया उल्टा ये सब चीज आए गढ़ी पर
द्रौपदी पांचों पांडव वहां पर थे कुछ दिन, वहीं पर एक यक्ष को भीम ने मारा था, बकासुर को, राक्षस को, वो भी विचार यहीं पर थी। और भी वहां पर विमला कुंड है, वहां पर भी बहुत सी लीलाएं हुई। पासी में हमारे संप्रदाय के प्रबोधानंद सरस्वती भी वहीं पर पासी में भजन करते थे, चरण पहाड़ी के लुकलुकी कुंड के पास कृष्ण उस पर्वत के ऊपर है, बंसी बजाया खल गए, उनके चरणों का स्पष्ट छाप वहां पर अंकित हो गया और उसमें चिन्ह है वहां पर चिन्ह है, दोनों चरणों के चिन्ह कुछ एड उठी हुई, दोनों चरणों के चिन्ह। हम लोग गुरु जी के साथ में बहुत पहले गए थे, वहां पर देखा पहाड़ों छोटे छोटे टुकड़ों पर हिरणों के चिन्ह है, सत्ताओं के चिन्ह है, बौद्ध के, और वो सब लुप्त हो गए, खास करके लोग अपने घरों में लेकर के पहाड़ के ऊपर से ही हम लोग गए थे सस पहाड़ ये सब स्थान है। ये सब और भी बहुत से लिए आए हैं, आज चरण पहाड़ी का बात मैंने कहा, आज आप लोग बहुत थक गए हैं, विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए सभा आज यहीं पर समाप्त की जाएगी और आप एकत्र करेंगे।
Don't they like this? Then further by force kidnap her, and she was cried out, "Oh, pay him, oh, Arjun, please help me, please help me." And Bhima and Bhima and Arjun chased Jayadrath. Although Jayadrath was in chariot, but Bhima and Arjun, they are so strong, being the embodiment of air, how can go faster than him? And Arjun was the biggest archer of the world. He did some mystic, that means he knows so many tricks, by arrow in a fire, then take a root and move. And Bhima and Arjun came very close to Jayadrath, seeing this Jayadrath drop down for his ear and run away from there. But how he had run more faster than Bhima and Arjun? They grabbed him and did the Draupadi. Oh, Pantali, please tell, what shall we do with him? Shall we kill him? No, don't kill him. Because you have five brothers and together are hundreds. Among 105 of only one sister. Sister, do you? Don't do so. What to do now? There is mentioned scripture, Manikatnan Opamano Vrithutulla. If anyone is very honorable person, you insult him. Insult is equal to death. So, the Bhima and Arjuna made five sikhas here and there, made very ugly, and let him go. Then he came very furious, so the Guruji saw and suggested hardly, okay, what else the revenge? From there he now went back to his country. He went to the austerity of Lord Shiva and wanted to kill five Pandavas, but Lord Shiva did not give his benediction. After that, Guruji told us so many places, so Vimala Kunda, there are so many darshaniya sthan is there. And other places, especially to the told, near Charanpada is one big kunda named Lukundi Kunda. And Krishna played on flute and mounted male, and Krishna's footprint came there, like he is standing in three from the mystic board. The footmarks of earth is completely vivid there, and for lying on the front part of the earth. And Gurudev told, when he used to travel with his कुलदेवी साहब परमगुरु से मुझे कोई भजमंडल को एक नवा at that time there were seals, multiple pieces of stone, so many marks of deers, stars, cows and circus. Nowadays no more available because the small stone not big at all. So the devotees take away from there and keep their house. So Gurudev told, he is very long day, also very tired, better after that he can take rest, this is the best for you. So now Gurudev ordered some Sankirtan and tomorrow will be our darshan will announce tomorrow morning, especially go Bhagavad Gita, Chantavaya, Ratna Kunda, Ratna Vedi and Narasa Kunda. Hare Krishna.